कर्मान् कर्ता नाङ्गं न संगं न स्वेक्षा न कायम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न बन्धो न मोक्षो न रागादिदोषो न मोक्षो न रागादिदोषो न योगं न भोगं न व्याधिर्न शोकान् न भोगं न व्याधिर्न शोकान् न कोपं न मानं न माया न लोभं न कोपं न मानं न माया न लोभं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न जिह्वा न पादौ न घ्राणं न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न जन्मं न मृत्यु न मोहं न चिन्ता न मृत्यु न मोहं न चिन्ता न शूद्रो न भीतो न कार्ष्यं न तन्द्रा न भीतो न कार्ष्यं न तन्द्रा न स्वेदं न खेदं न वर्णं न मुद्रा न खेदं न वर्णं न मुद्रा चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् त्रिदण्डे त्रिखण्डे हरे विश्वनाथम् त्रिखण्डे हरे विश्वनाथम् ऋषिकेश विध्वस्तकर्मादिजालम् विध्वस्तकर्मादिजालम् न पुण्यं न पापं न चाक्षादिगात्रम् न पापं न चाक्षादिगात्रम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो न स्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेहा न भेदं न मूर्तिर्न स्नेहा न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तन्द्रा न शुक्लं न मोहं न तन्द्रा चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् रूपं नमो वीतरागम् नाद्यं न मध्यं नान्तं न चान्यत् न मध्यं न अन्तं न चान्यत् न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावान् न क्षेत्रं न कालो न भावान् न शिष्यो गुरुर्नापीनं न दीनम् गुरुर्नापि हीनं न दीनं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् रूपं नमो वीतरागम् इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी निरूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपम् न ನ ಚಾನ್ಯೋ ನ ಭಿನ್ನಂ ನ ಪರಮಾರ್ಥಮೇಕಂ ನ ಭಿನ್ನಂ ನ ಪರಮಾರ್ಥಮೇಕಂ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ನಮೋ ವೀತರಾಗಂ ರೂಪಂ ನಮೋ ವೀತರಾಗಂ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಗುಣಾಕರಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ಭೂತಗತಾಗತೆ ಸುಖ ದುಃಖೇ ಜ್ಞಾತೆ ತ್ವಯಿ
ಸರ್ವಗೇ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಮನಸಾ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ವಂದೇ ತಂ ಹರಿವಂಶಹರ್ಷಗದಯಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹೃದಾವಿಚ್ಯತಾಂ ವಿದ್ರಾಗ್ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಪೂಜಾ ಕಿ ಪೀಠಿಕಾ ಯಾ ಪೂಜಾ ಕಿ ಜೋ ಭೂಮಿಕಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಕ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಯೆ ಅಪನ್ ಜಾನ್ ರಹೇ ಹೈ ಕೈಸೆ ಅಪನೆ ಕೋ ಇಸ್ಸೆ ಯೆ ಭೀ ಐಡಿಯಾ ಲಗ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಕೈಸೆ ಭಾವೋ ಸೆ ಅಪನೆ ಕೋ ಪೂಜಾ ಶುರು ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಜನೇಂದ್ರ ಮವಿವಂದ್ಯ ಜಗತ್ ತ್ರಯೇಶಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಪಡೆಂಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಜನೇಂದ್ರಮವಿವಂದ ಜಗತ್ರಯೇಶಂ ಜನೇಂದ್ರಮವಿವಂದ ಜಗತ್ರಯೇಶಂ ಸಾದ್ವಾದ ನಾಯಕಮನಂತ ಚತುಷ್ಟಯಾರ್ಯಂ ನಾಯಕಮನಂತ ಚತುಷ್ಟಯಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀಮೂಲ ಸಂಘ ಸುದಶಾಂ ಸುಕೃತೈಕ ಹೇತುರ್ ಮೂಲ ಸಂಘ ಸುದೃಶಾಂ ಸುಕೃತೈಕ ಹೇತುರ್ ಹೇತುರ್ ಬೋಲ್ನಾ ರೇಪ್ ಆಗೇ ಪಹಲೆ ಜೈನೇಂದ್ರ ಯಜ್ಞ ವಿಧಿರೇಶ ಮಯಾಭ್ಯದಾಯಿ ಜೈನೇಂದ್ರ ಯಜ್ಞ ವಿಧಿರೇಶ ಮಯಾಭ್ಯದಾಯಿ ಕ್ಯಾ ಕಹ ರಹೇ ಹೈನ್ मैं यहां पर जिनेंद्र भगवान के पूजा की विधि जैनेंद्र यज्ञ विधि ऐसा मया अभ्यदायी मेरे द्वारा जिनेंद्र भगवान के पूजा की विधि यहां पर शुरू की जा रही है। श्रीमद् जिनेंद्रम अभिवंद जगत त्रयेशम कैसे हैं वे जिनेंद्र भगवान? वे तीनों लोकों के द्वारा अभिवंदनीय हैं, अर्थात तीनों लोक उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें ही पूज्य मानता है। और वे भगवान कैसे हैं? साद्वाद नायकम, वे साद्वाद के नायक हैं। जितना भी प्ररूपण है, जितनी भी जिनवाणी है, वो किस रूप है? साद्वाद रूप है। साद के मायने होता है कथनचित, इन रिलेशन टू, और वाद के मायने होता है कथन करने की शैली, एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन। तो रिलेटिव डिस्क्रिप्शन के मायने होता है साद्वाद, और ऐसी भगवान की जिनवाणी है। तो कह रहे हैं वे इस जिनवाणी के नायक हैं, उन्होंने ही तो ऐसा हमें तत्व का प्ररूपण किया है। और अनंत चतुष्चार्यम, अनंत चतुष्टय कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय आर्यम जिनको कि ये प्राप्त हो चुके हैं, इनके द्वारा जो पूज्यता को प्राप्त हुए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की मैं पूजा की विधि शुरू कर रहा हूं। अपने मन से नहीं करूंगा, लेकिन हां मुझे क्या मालूम कि कैसी करनी चाहिए। तो श्री मूल संग सुदृशां, जैसी मूल परंपरा चली आ रही है उसके अनुरूप करूंगा, अपनी मनमानी ना करूंगा। हाँ, जैसा आगम में लिखा हुआ, इनने उनने, इनने बता दिया वैसा कर लिया, उनने बता दिया वैसा कर दिया, ऐसे नहीं करूंगा। मैं तो जैसे मूल परंपरा से चली आ रही है उसको जान करके ही करूंगा। और सुकृतई के हेतु क्यों करूंगा? कोई भी काम बिना पर्पस के तो किए नहीं जाता, कोई ना कोई कारण तो होगा, क्यों करूंगा? सुकृतैक, एकमात्र मेरा उसमें उद्देश्य है कि मेरे पुण्य का अर्जन हो। सुकृतैक, सुकृत मतलब होता है पुण्य। मैं ऐसा सातिशय पुण्य, अपन लोग पुण्य शब्द सुनते ही थोड़े से घबरा जाते हैं, करे यार अपन तो सुनते हैं कि पुण्य तो हे है और जी कह रहे कि पुण्य के लिए करते हैं, तो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि बार 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 वो चीज सुनी जाती। अब उसमें अपन को थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए कि वक्ता ने अगर ये कहा है कि पुण्य हे है तो कौन सा वाला, तो क्या पुण्य भी दो प्रकार का होता ही है? थोड़ा पढ़े अपन, कुनकुन स्वामी के चरणों में बैठे हैं अगर आचार्य महाराज के, तो वो कहेंगे सम्यक दर्शन के साथ जो पुण्य का बंध होता उसे सातिशय पुण्य कहते हैं, और मिथ्या दृष्टि के जो पुण्य का बंध होता उसे निरतिशय पुण्य कहते हैं। सातिशय पुण्य तो परंपरा से मोक्ष का कारण है और निरतिशय पुण्य तो संसार को बढ़ाने वाला है। कौन सा वाला हे है? अब बोलो, निरतिशय मिथ्या दृष्टि के का पुण्य हे है और परंपरा से निर्वाण का कारण सातिशय। हम तो श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, हम तो पूरी दृष्टि की निर्मलता के साथ पुण्य का अर्जन करेंगे, और इतनी नहीं, अभी लास्ट में कहेंगे कि वैसे तो आप हमें थोड़ा मोड़ा पुण्य देकर के टिरका मत देना, हम इतने सस्ते में मानने वाले नहीं है। हाँ, आखिरी में कहेंगे पहले तो मैं पूजा कर रहा हूं पुण्य के लिए, भला कुछ हो मेरे जीवन में इसके लिए, और लास्ट में कहेंगे कि इतने ही में नहीं मानूंगा, मैं आपसे कम में नहीं मानूंगा, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए मुझे। ऐसे मांग लिया, सबसे पूरी चीज मांग ली, आपके अंदर जितने गुणों की संपदा है वो चाहता हूं, थोड़ी मोड़ी दे करके नहीं आप हमको लगा देना कि जाओ, संतुष्ट नहीं होने वाला। अभी तो कह रहे हैं लेकिन कि मैं इस पूजा का उद्देश्य क्या लेके आया हूं, सुकृत हो मेरा जीवन, भला हो। पुनाति आत्मानं पवित्री करोति इति पुण्यम्। पुण्य की पूजपात स्वामी महाराज ने परिभाषा बनाई है कि जो आत्मा को पवित्र करे सो पुण्य। पुनाति आत्मानं पवित्री करोति इति पुण्यम्। ऐसे पुण्य को जो मेरी आत्मा को निर्मल करे, मैं इस उद्देश्य से आपकी पूजा कर रहा हूं, और कोई मेरा पूजा करने का उद्देश्य नहीं है। स्वस्ति त्रलोक गुरुवे जिना पुंगवाय,
त्रलोक गुरुवे जिना पुंगवाय,
स्वस्ति स्वभाव। अभिषेक थोड़ू कर रहे हैं, स्वस्ति वो अभिषेक पाठ में भी यही लाइन है, चार लाइन है।
स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, महिमोदय सुस्थिताय,
स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित जिंगमयाय,
स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित जिंगमयाय,
स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय,
प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय।
स्वस्ति मतलब कल्याणम अस्तु, मेरा कल्याण हो, ये सब मेरे कल्याण में निमित्त बने। कौन कौन? त्रिलोक गुरुवे, तीनों लोकों में जो गुरु हैं वे पांच ही गुरु माने गए हैं, वे सब मेरे कल्याण में निमित्त बने, और उनमें से भी सबसे श्रेष्ठ जिन पुंगवाय, पुंगव के मायने होता श्रेष्ठ। जिनेंद्र भगवान में श्रेष्ठ कौन होते हैं? तीर्थंकर। हाँ, सब जिनेंद्र हैं लेकिन उनमें भी सबसे श्रेष्ठ तो तीर्थंकर। वे पांचों परम गुरु, पांचों तो नहीं परम गुरु, पर गुरु पांच हैं, उसमें से परम गुरु अरंत भगवान हैं, और अरंत भगवान में भी सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? तीर्थंकर। अब क्लियर हो गया, परम गुरु कौन है? अरंत भगवान। वैसे तो पंच परमेष्ठी सब गुरु हैं लेकिन उनमें परम गुरु हैं अरंत भगवान, अरंतों में भी श्रेष्ठ कौन है? तीर्थंकर। चौबीसों वे मेरे लिए कल्याणकारी हों। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, जो अपने स्वभाव की महिमा में स्थित हो गए हैं, जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त करके उसी में लीनता प्राप्त कर ली है। सुस्थिताय मतलब भली प्रकार से स्थित हो गए, और महिमोदय उनके अंदर वो उस महिमा का उदय हो गया है। कौन सी? जो स्वभाव की महिमा है, अर्थात अपनी स्वाभाविक अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वैसे वे भगवान मेरे लिए कल्याणकारी हो। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृग्मयाय, और यहां पर क्या लिया हुआ है? दृग्मयाय से ज्ञान ले लिया। क्यों भाई? केवल ज्ञान रूपी ज्योति, दृग जो है ज्योति उसको बोलेंगे, चक्षु को है? तो दृग्मयाय अर्थात सहज जिसमें से प्रकाश स्फुरायमान हो रहा है, या जिसमें से स्वयं तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसी देखने की दृष्टि अर्थात केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, ऐसे भी भगवान मेरे लिए कल्याणकारी हो। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, जो अत्यंत सुख रूप और ललित कोमल अद्भुत वैभव को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे भी भगवान मेरे लिए मंगलकारी हो। स्वस्त्युच्छल विमला बोध सुधा प्लवाय, छलत विमला बोध सुधा प्लवाय, स्वस्ति स्वभाव परभाव विभास काय, विभास काय, स्वस्ति त्रलोक विततैक चिदुद्गमाय, त्रलोक विततैक चिदुद्गमाय, स्वस्ति त्रकाल सकलायत विस्तृताय, त्रकाल सकलायत विस्तृताय। ये आचार्य महाराज का सबसे प्रिय छंद है वसंत तिल का। इस छंद में 2000 श्लोकों का अनुवाद किया है आचार्य जी ने, खुद बनाए भी हैं और अनुवाद भी किया। ना 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 ना, ये उसका मूल है। इसी पर बना हुआ है ओरिजिनली भक्तांबर, लेकिन सब अपने अपने मन से पढ़ते हैं तो उतना आनंद नहीं आता। अगर इसी भक्तांबर को भी इसी तरह से पढ़ा जाए, कितनी कैसेट निकलती हैं, लेकिन सब अपने अपने तरह की मूल जो वसंत तिल का छंद की राग है उस राग में, तो उसका भाव अलग ही समझ में आता है। अब देखो इसको अपन देखें क्या कहना चाह रहे हैं। स्वस्ति उच्छलद विमल बोध सुधा प्लवाय, जिनके अंदर क्या हो रहा है? उछल रही है। कैसी? विमल बोध अर्थात ज्ञान, और सुधा मतलब अमृत, उसका आप्लावन हो गया, फ्लड आ गया है। जिनके भीतर अमृत रूपी है ज्ञान, और वो भी विमल ज्ञान, उसका जैसे फ्लड आ गया, जैसे कि बाढ़ आ गई है, जिनके भीतर से वो अपने आप बाहर बहने लगा है। मतलब क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया तो सारे पदार्थ उसमें अपने आप आकर के और झलकने लगे हैं, कहना यही चाह रहे हैं। और कह रहे हैं उस केवल ज्ञान के द्वारा क्या होता है? स्वभाव प्रभाव विभास का है, वही केवल ज्ञान है जो क्या स्वभाव है और क्या प्रभाव है, स्वपर का भेद विज्ञान कराने वाला वह जो भगवान का केवल ज्ञान है, वो मेरे लिए कल्याणकारी हो। स्वस्ति त्रिलोक वितताई के चिदुद्गमाय, जिसमें तीनों लोकों के जितने भी पदार्थ हैं, चेतन अचेतन, वे सब प्रकाशमान हो रहे हैं या कि झलक रहे हैं। उद्गमाय चिद उद्गमाय, अर्थात अपनी समस्त चेतना के साथ, ऐसा अर्थ ले लें क्या? क्या लिया उन्होंने? चित उद्गमाय। हिंदी है क्या किसी के? उसमें नहीं है। अच्छा, अभी मुझे तो यही समझ में आ रहा है। त्रिलोक विततैक, वितत एक, वितत मतलब फैल गया है तीनों लोकों में चेतना के द्वारा जो ज्ञान, जिसमें कि सारे पदार्थ जाने जा रहे हैं, यही अर्थ है। और कोई विशेष होगा अगर भूल चूक तो मैं बता फिर बाद में सुधार दूंगा। इसमें दिया क्या बताना? भूल चूक हो सकती है, हिंदी में दिया क्या? लेकिन वो बना करके दिया होगा उन्होंने, पद में बना दिया होगा। हाँ, पद में बना दिया, वही कल्याण सभी जगती तल का नहीं, निर्मल बोध सुधा संप्रकटा स्वपर विवेक करावनहारा, तीन लोक में प्रथित हुआ, फैला हुआ, वही विस्तार को प्राप्त हुआ। ठीक, सही है। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, जो तीनों लोकों में, वो बात वही है, तीनों लोकों को प्रगटाने वाला है और तीनों लोकों में जो व्याप्त है, ओमनी क्या कहलाता है इंग्लिश में, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित है, अर्थात केवल ज्ञान के माध्यम से जितने सब जगत में अपने को फैला लिया है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान, और ओमनी साइंट के मायने हैं समस्त पदार्थों को जानने वाला। ये तीन शब्द हैं बिल्कुल प्रसिद्ध, और तीनों की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर। आश्चर्य होता है कि हमारे आचार्य भगवंत और अत्यंत ज्ञानवान थे, छोटी मोटी चीज नहीं है जो आज वर्तमान में और इस विज्ञान का इतना अपन हल्ला करते हैं और उसको उसको सर्वोसर्वा मान बैठे हैं। इसमें पढ़ करके लगता है कि उनको ये सब चीजें, एक ऐसी स्थिति है कि ज्ञान में सारी चीजें झलक गई, और इतना ही नहीं उस ज्ञान के माध्यम से हम तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। बताओ, तीनों लोक भगवान के ज्ञान में आ गए, मतलब भगवान तीनों लोकों में व्याप्त हो गए कि नहीं? तीनों लोकों में व्याप्त हैं और तीनों लोकों की सारी वस्तुओं को अपने भीतर जिन्होंने दर्पण के समान प्रकटा लिया है, ये दोनों अर्थ, वो सब केवल ज्ञान हमारे लिए क्या करे, कल्याणकारी हो। बस, क्योंकि फिर प्रश्नोत्तर हैं, दो बाकी रह गए तो उसको अपन कल कर लेंगे। हमें दे दो। इन्होंने पूछा है कि अमीर आदमी के यहां जो जानवर कुत्ता आदि पाले जाते हैं उसको किसी गरीब आदमी से ज्यादा सुख मिलता है, जैसे अच्छा खाना, गाड़ी में घूमना, एसी में सोना, ऐसा क्यों होता है और कौन बेहतर है? दोनों प्रश्न। अरे भैया, इन्होंने इतने बड़े कागज पर और इतना प्रश्न लिखा है, इसको और लोगों को दे देते तो अच्छा रहता, इतना कागज। अब इसका प्रश्न का उत्तर देखें अपन। जो भी जानवर पशु हैं उनको अगर फैसिलिटीज मिलती हैं तो ये उनके अपने पुण्य का उदय है, पूर्व संचित, और वो जो उन्होंने तिरंच पर्याय पाई है वो उनके पाप का उदय है। क्या होता है, कोई बहुत धर्म कर्म कर रहा है लेकिन जब आयु का बंध होने लगा तब मायाचारी के भाव आ गए, और उस माया तैरग्यो नश्य, मायाचारी के परिणाम स्वरूप आयु बंध हो गया तिरंच का, और बाकी जीवन भर बहुत धर्म किया उसका पुण्य भी संचित था, तो जब पर्याय मिली तो तिरंच की, लेकिन वो पुण्य पल्ले में था तो सारी सुख सुविधाएं उसके साथ में जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति जो जीवन भर बुरे कर्म करता रहा और जिस समय आयु बंद हो रहा था उस समय थोड़ा सा संतोषी हो गया, वो अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, संतोष पूर्वक जीऊं ऐसा उसके मन में विचार आ गया और आयु बंधी, मनुष्य आयु बंध गई, हो तो गया मनुष्य लेकिन दाने दाने को रोड के किनारे बैठा तरसता है, क्यों? जीवन के जो खोटे कर्म हैं वे तो उसका फल तो मिलेगा। तो ये तो हुई बात इस तरह की कि क्यों किसी कुत्ते को भी इतना कुछ फैसिलिटीज, इतनी सुख सुविधाएं क्यों मिलती हैं, उसके पीछे उसका पूर्व जन्म का संचित पुण्य तो है ही। अब रही बात ये कि जो एसी में घूमने वाला कुत्ता है वो बेहतर है या कि जो मनुष्य होकर दरिद्री है वो बेहतर? क्या लिखा उसमें, क्या चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्म वासिता, अगर जिनेंद्र भगवान के धर्म में मैं उत्पन्न हो गया हूं तो मुझे किसी का नौकर होना और गरीब होना भी पसंद है। इसके मायने क्या हुआ? इसके मायने यह हुआ कि नौकर और गरीब होना कोई मायने नहीं रखता है उस समय जबकि मुझे जिनेंद्र भगवान की शरण मिल गई है, ये मेरे पुण्य का उदय। उसको उसको मिल गई होगी बढ़िया खाने की चीज, उसको मिल गई होगी एसी में बैठने, लेकिन उसको जिनेंद्र भगवान की शरण नहीं मिली। उसको तो बुद्धि नहीं है कि वो जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करे। हम हमारे अंदर तो ये सामर्थ्य है कि हम अपने अपनी बुद्धि से जिनेंद्र भगवान की शरण प्राप्त कर सकते, इसलिए बेहतर तो मनुष्य ही है भैया, चाहे वो कितना भी दीनहीन और गरीब क्यों ना हो, चाहे तो अपनी उस दीनता और गरीबी का सदुपयोग कर सकते हैं वर्तमान में संतोष पूर्वक जी करके और आनंद ले सकते हैं भगवान की शरण में रह करके, अभाव की पीड़ा ना हो, दाम बिना निर्धन दुखी। तो दाम बिना निर्धन दुखी क्यों हो? बहुत अच्छा हुआ, बेकार का उपद्रव नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं वैसे नहीं हो जाता, पैसे वाला होता तो दुनिया भर के और कर्म करने की तरफ मुझे प्रेरणा मिलती। अच्छा हुआ कि थोड़ा ही है, मुझे इतना ही काम चलेगा। लेकिन जिनेंद्र भगवान की शरण नहीं छूटनी चाहिए, वो मुझे बनी रहे, बस इतना ही चाहता हूँ। दो रोटी खा लूंगा, एक बार खा के रह जाऊंगा, यही मान लो कि मैंने एक आसना कर ली, एक ही बार का नियम बना लिया, क्योंकि जुड़ता ही नहीं है खाने के लिए, एक बार ही मिल जाए वही ठीक है। तो हमने तो नियम ही कर लिया कि एक आसनी करेंगे जिंदगी भर, क्योंकि मिलना ही नहीं है। लेकिन मिलना ही नहीं है, जब जिस दिन मिलने लगेगा उस दिन भी एक आसना ही करूंगा, हाँ तो जरूर से मिलने लगेगा, ध्यान रखना, दो दो बार मिलने लगेगा, फिर परीक्षा हो जाएगी कि अब करो, अब तो एक ही बार, मैं तो जीवन भर का नियम ले चुका हूं। इस तरह चाहें तो कर सकते हैं। प्रश्न से भी अधिक जवाब दे दिया हमने, प्रश्न तो नहीं पूछा था, उनने थोड़ा ही पूछा था। भरत क्षेत्र के इंसान दूसरे क्षेत्र में जीते जी जा सकते हैं, कोई लो आ जावे तो जा सकते हैं, ले जाने वाला होना चाहिए। हमने बुंदेलखंडी बोल दिया इसलिए गड़बड़ हो गई। कोई अगर उसको ले जावे तो ढाई द्वीप में मनुष्य कहीं भी जा सकता है। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज सब दूर विचरण करते हैं ढाई द्वीप में। अगर इसी तरह विद्याधर के द्वारा कोई मनुष्य को ले जाया जाए भरत क्षेत्र के अपन में से, जैसे कि कुंद आचार्य महाराज को ले गए थे, कहां ले गए थे, विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समोशरण में, तो ले जा सकते हैं। जीते जी मतलब इसी रूप में जा सकते हैं, इसमें कोई
आकाश मार्ग की वाहन नहीं
जी, आकाश मार्ग के वाहन अब कौन जात दिखा तो अपन भी बैठ जाते हो में कौन नहीं जा थोड़ा दोस्त लग जाता, लेकिन 15,000 ने कितने ऊपर जाए, लेकिन मुश्किल है, उसमें तो जा नहीं सकते। विमान तो विशेष विद्याधरों के विमान होवे तो ही जाएंगे, ये तो मनुष्य कृत है, इसमें विशेषता उतनी नहीं है। तो उस समय हाँ, तो उस समय उनको वैसी सामर्थ्य थी। अच्छा वैसा पुण्य भी तो चाहिए महाराज, जा भी लायक
नहीं।
हाँ तो देव जब आए, बेमानिक देव जब आए, जब अपनों पुण्य हुई है,
समुद्र के देव 5-10 बैठे,
चलो और मान ली, लेकिन का बात से ले गए थे, उनके पुण्य से ले गए थे कि अपने मन से, उनके पुण्य। हाँ तो मुख्य बात यही है कि आज वर्तमान में हमारा इतना पुण्य नहीं है कि अन्य कोई शक्तिशाली वहां तक ले जाने वाले का संयोग अपन को मिले, मिलेगा ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं होगी, पुण्यात्मा हो ले जाएगा अपन को, कहेगा ढूंढ में ले जाए। हाँ कोई पुण्यात्मा होगा तो कहेगा बैठो हम ले चलते हैं आपको, वहां पर दर्शन कराएंगे, इस तरह का। तो वर्तमान में अच्छा दूसरे क्षेत्र के भरत क्षेत्र में आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र वालों को बिल्कुल रुचि नहीं है भरत क्षेत्र में आवेगी, उतने चौथा काल वर्तता है, यहाँ पर जो है छहों काल वर्तते हैं, वहां एकमात्र चौथा काल है, काय को प्रपंच में पड़ेंगे वो, हैं अपने वहीं पर आसानी से धर्म ध्यान करेंगे, इसलिए उनकी तो गुंजाइश ही नहीं। आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन आते नहीं है। महाराज आपको नमोस्तु, मेरी आदत खरी और सच्ची कहने की है, सो मुझसे कई लोग नाराज हो जाते हैं, क्या करूं, अब एक कछु करो के तो सबको संतुष्ट रखो, सो झूठी बोलो, और या फिर अपने ऊपर जमे रहो। हाँ चाहे जैसी लगे दूसरे को अच्छी लगे तो ठीक, लेकिन इतना जरूर है कि दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला सत्य भी नहीं बोलना, सत्यमपि विपदे, ऐसी सच्ची नहीं बोलना जिससे दूसरे पर विपत्ति आ जावे, हाँ फांसी लग जावे उसकी, चोर को भी चोर नहीं कहना। बताओ आप ऐसा लिखा अपने यहां पर, सामने सामने देख लिया कि चोर है, अगर कह दूंगा उसे पनिशमेंट तो दिलाना है, लेकिन उसका मरण ना हो, बस ये ध्यान रखना, उसे पनिशमेंट तो देंगे ऐसा नहीं, तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, उसे पनिशमेंट देंगे, लेकिन अगर उसके कानों का घात होने लगे तो फिर नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे बोलने से उसे फांसी हो गई अगर, तो फिर मेरा बोलना मेरी गवाही झूठ कहलाएगी, हाँ क्योंकि सच वही है जिससे दूसरे की प्राणों की रक्षा हो, और झूठ वो सब कुछ है जिससे दूसरे के प्राण चले जाए, वो सब झूठ है, चाहे कितनी ही सच्ची हो, वो सब झूठ के कैडर में जाएगा। हमारा क्राइटेरिया क्या है सच और झूठ को परखने का, हिंसा और अहिंसा, हिंसा है तो सब झूठ है, और अहिंसा है तो वह सच है, हितकारी वचन बोलना, इसलिए इतना और सीख लो, उसमें सच्चाई तो कहना चाहिए पर दूसरे को चोट पहुंचाने वाली नहीं कहना चाहिए, और मन खट्टा करके नहीं कहना चाहिए, कड़वी बात नहीं होती है, मन कड़वा होता तो बात कड़वी हो जाती है, बताओ बात कड़वी होती क्या, कड़वे मन से कहो सो कड़वी हो जाती। अब माँ ऐसा करती है तो क्या मारेगी क्या, नहीं प्यार से कर रही है, ये कैसे मालूम पड़ा आपको, ये उसके परिणामों से मालूम पड़ा, किया तो उसने ऐसे ही, दूसरा भी ऐसे ही करे तो वो बिल्कुल एकदम सन्नाटे में आ जाएगा कि क्या कर रहे, और माँ ऐसे करे तो एक्शन दोनों का एक, लेकिन भीतर का अंतरंग का भाव वो महत्वपूर्ण है। बात महत्वपूर्ण नहीं हमारे अपने परिणाम कहने के क्या हैं, उस समय हमारे भाव कैसे हैं। खोटे हैं तो फिर बात भी खोटी हो जाएगी। विकासना में एक समय खाना खाने के बाद शाम को फलाहार लेना उचित है क्या? आजकल सुबह पूजा पाठ के बाद लोग चाय पी लेते हैं, उसके दो घंटे बाद खाना खा लेते हैं, फिर शाम को फल ले लेते हैं, ये सब क्या उचित है? आपको क्या दिक्कत है? आपसे तो वो ऐसा कह नहीं रहे, बताओ, हमें आपसे पूछना है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ? उसने वैसा ही नियम लिया होगा तो वैसा ही कर रहा हो, सवेरे चाय पियेंगे, हाँ, कम से कम रात्रि भोजन त्याग किया, दस दफे तो नहीं खाया दिन भर में। आपने एक आसन नहीं देखा अभी, कई लोग करते हैं ऐसा एक आसन, 11:30 बजे बैठे एक आसन पर और शुरू हो गया एक आसन, फिर उसमें, हाँ बेटे, फिर उसमें जो है सब चीजें शुरू हुई, कब तक चलाइए? 2:30-3 बजे तक चलाइए एक आसन, बढ़िया। अब इसको क्या कहोगे? उसी में चाय पी ली, उसी में भोजन, उसी में भैया, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना करे। अपने यहाँ पर एक आसना के मायने हैं एक भुक्ति, एक बार भोजन करना, बार बार भोजन करने की आकुलता नहीं हो इसलिए। और कोई व्यक्ति को अगर दो बार की भुक्ति में ग्रहण करने का भाव है तो ठीक है भाई, दो बार आप ग्रहण कर लो, चार बार करते थे दो बार कर लिया, पीठ थपथपाने लायक है, निंदा करने लायक नहीं है। जैसा आप उचित अनुचित का निर्णय कौन करेगा? अगर कोई एक आसना कह करके दो बार खावे तो कहेंगे भैया ये तो ठीक नहीं, आप दो ही बार का कहो ना कि दो बार खाने का नियम लिया, एक बार अन्न दूसरी बार फल, हमने तो दो बार का नियम लिया, इतना इसमें क्लियर रहे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो व्यक्ति बेचारा परेशान हो जाएगा। ये क्या लिखा, पंचामृत से अभिषेक करना उचित है कि नहीं? इन प्रश्नों का समाधान करना मेरा काम नहीं है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि अभिषेक की प्रक्रिया दोनों तरह की आगम के अनुकूल है। दोनों पद्धतियां, जल से अभिषेक करना या कि घी दूध दही से अभिषेक करना, दोनों पद्धतियां आगम सम्मत हैं। फल फूल गीले चढ़ाना या कि सूखे चढ़ाना, दोनों पद्धतियां आगम से मान्य हैं। इतना ही लिखा है, अब इसमें विवाद की कोई बात ही नहीं है। आपको जौन सा चढ़ाना वो आप चढ़ाओ, कोई आपका हाथ तो पकड़ नहीं रहा। जैन लोगों के नहीं रहने पर नौकारी, जैन लोगों के नहीं करने योग्य नौकारी महाराज ने बताए थे। महाराज का नाम लिखा है, जैसे लाख, नील, लोंदा, तांबा, सीसा, बाकी तीन कारी कौन से हैं वो हम भूल गए, बताओ महाराज। नौकारी
लाख, नील, रंग आज दे सन सावन वह,
सन सावन
वो लोहा सूस, लोहा सीस, लोहे पन, ताम सीस, लोहे पन, तीन बन दीने।
मतलब इनमें हिंसा बहुत होती, जैसे अपन ने एक दिन 15 कर्मों का नहीं पढ़ा था, 15 खर कर्म, क्रूर कर्म हैं, वैसे ये भी 9 कर्म ऐसे हैं जिनमें की बहुत हिंसा होती है। वही बोले हम, आप लिख देना महाराज से पूछ, आएगा कैसे समझ में? 9 चीजें, अब वो दोहा में है ना, जैसे लाख, तो लाख तो समझ में आया, नील, नील बनाते ना, नील, नील देते हैं अपन, तिनोपाल नील डाल देते हैं वो, हाँ वो नील बनाने की प्रक्रिया हिंसात्मक है, जैसे बनती है नील लिक्विड फॉर्म में, और फिर क्या, नील,
नील रंग,
रंग, कोई भी रंग बनाते हैं, उन रंगों में भी अब तो जो है बनने लगे हैं कलर माने आर्टिफिशियल या कि सिंथेटिक, लेकिन पहले कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता था जीव राशि से, तो वो बहुत हिंसा का काम था कलर बनाना, इस वजह से। और
सन सावन,
सन, सन मतलब वो जो जूट होता ना, जूट उसको बोलते सन, जो पानी में होता है और फिर वहां से निकाल करके उसको, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वो जूट बनाया जाता वो, और फिर साबुन, साबुन की फैक्ट्री, हमें मालूम है कि सागर में कितने सन की बात होगी, हाँ मलय जी ने पहली बार खुलाई थी तो मीटिंग बैठ गई थी समाज से बहिष्कृत करने की। हाँ एक समय था जब अगर कोई जैनी व्यक्ति इस तरह की फैक्ट्री डालेगा तो समाज से आना जाना बंद, रोटी बेटी का व्यवहार बंद। हाँ पहले ये था, स्ट्रिक्ट नियम थे इस तरह के। तो ये साबुन का व्यापार भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत हिंसा होती है, उसमें जो केमिकल्स डलते हैं, जब उसमें से वाटर जो वेस्ट है वो निकल करके वो नदियों में जाता है, वो नाले में जाता है, बह करके नदी में, तो अपार जीव राशि का मरण। वो केमिकल है, वो एसिड है, वो तो एकदम उसमें कास्टिक एसिड, अब कास्टिक एसिड उसमें जाएगा तो मरेंगे सब जीव। इसलिए वो हिंसा का काम, साबुन, तांबा, शीशा और लोहा, इन सबका इनका, हाँ इनका व्यापार करना, क्योंकि इसमें हिंसा बहुत होती। अब तो थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे, लिख लेना आप तो अच्छा रहे। हाँ साबुन बनाना नहीं चाहिए, यूज करने में भी त्यागी व्रती को बचना चाहिए, क्योंकि उसको अपन धोएंगे तो फिर वो पानी नाली में जाएगा, उसमें जीव राशि मरेगी, सीधा सीधा है साहब। अष्टमी चतुर्दशी को कई लोग नहीं उपयोग करते नहाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गंदे ही बने रहो। ऐसा साबुन भी है जिसमें कि चर्बी वगैरह नहीं मिलाई जाती है, हाँ जिसमें कास्टिक सोडा भी इतनी ही मात्रा में मिलाया जाता, और सावधानी रख करके हम उस कार्य को करें तो हिंसा से बच सकते हैं। हैं कुछ दिन पहले हमने एक महाराज को आहारचर्या पर निकलते देखा, उन्होंने मुद्रा धारण नहीं करी, एक हाथ में कमंडलू दूसरे हाथ में पीछी थी, कैसा संभव है? ऐसा जो है वो विद्यानंद जी महाराज के परंपरा में है, वो सीधे ऐसे ही चले जाते हैं, और जब आपके यहाँ पर विधि बन गई तो वहीं पर फट से जो है ले लेते हैं बस। तो एक परंपरा वो भी है, आप हम इसका जवाब भी यही देंगे कि इसमें आपको क्या दिक्कत। हाँ अब ठीक है, वो परंपरा है, वो ऐसे चले जाते हैं सहज रूप से, और फिर जहां मिल गई तो वहां पर ऐसे अंजलि ले लेते हैं, उनका प्रगान होता है। ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे अपन, इसको तो अंजलि बोलेंगे, अब इसको क्या बोलते, अगर इसको मुद्रा बोलेंगे तो ऐसी कोई मुद्रा जैन आगम में नहीं लिखी, मुद्रा तो जिन मुद्रा है, इसलिए कई लोगों ने बाद बाद में होशियारी में क्या बुलवाना शुरू कर दिया, मुद्रा छोड़ के अंजलि बांध के आहार ग्रहण करो, मतलब हम अपनी जिन मुद्रा ही छोड़ दें, क्या करें? तो मुद्रा शब्द आया ही नहीं आगम में, तो कहीं नहीं आया, ये तो मुझे ये तो सिर्फ एक तरह का संकेत है, आहारचर्या का, आहारचर्या का संकेत मात्र है, इसको मुद्रा नहीं कहेंगे, कहीं लिखा मिल जाएगा तो कह देंगे, जब तक अंजलि तो बिल्कुल इस पर अंजलि भी नहीं बोलते, ओरिजिनल शब्द क्या है, अंजलि नहीं है, ओरिजिनल शब्द है पानी पात्र, पाणौ इव पात्रः, पानी पात्र, कोई बर्तन इत्यादि नहीं रखते हैं फिर भी काहे से भोजन करेंगे, तो कहते पाणौ इव पात्र, दोनों हाथ ही जिनके पात्र हैं वो पानी पात्र, तो पानी पात्र में आहार करना, भजन गाते कि कब मेरे वो शुभ घड़ी आए जब पानी पात्र में करूं आहार, अंजलि में करूं आहार नहीं लिखा, पानी पात्र में आहार करूं। क्या बोल रही थी अम्मा जी, निज पान, वही निज पान का मतलब वहां पर दो ले लेना, एक जो आप अर्थ ले रहे हैं वो भी, और निज पान का मतलब है वैसे वो भोजन नहीं करते, वो तो आत्मा का ही आनंद लेते रहते, भोजन करते समय भी खड़े अलप निज पान में, अर्थात अपने आत्मा के अनुभव में लीन है, और वैसे भी देखा जाए तो बाहर से अपने पानी पात्र में जो भी आ जाता है वो, हाँ जैसे ही ग्रहण करने का भाव आया छठा गुण स्थान, लेकिन ऐसे ही नहीं कर लूंगा ग्रहण, शोधन करूंगा, समिति ले सावधानी, सातवां गुण स्थान, फिर खाने का भाव छठा गुण स्थान, स्वाद नहीं लेना सातवां गुण स्थान, गुटक गए भीतर ग्रहण का भाव, फिर छठा, हाँ एक एक कदम कदम पर, आप क्या समझ रहे हो उसको, अनकॉन्सियसली होता रहता है सारी चीजें, कुछ इसमें दिमाग विमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें, इतना कहने में दिमाग लग गया, इतनी देर में तो जो है छठा सातवां कई बार हो गया, ग्रहण किया शोधन किया और अंदर, करपात्र भी बोलते हैं, लेकिन करपात्र उपनिषद में आता है ये ध्यान रखना, करपात्र शब्द उपनिषद में है, पानी पात्र शब्द जैन आगम का है, ये शब्दों का अपना अलग अलग, अंजलि शब्द जो है वो वैष्णव पद्धति है, हाँ इसलिए सब चीजों का अलग अलग, अपने यहां पर पानी पात्र आता, अपने यहां पर मुद्रा के मायने हैं विभिन्न आसन, पद्मासन, ये सिद्धासन, ये सब मुद्राएं हैं, ये ध्यान की मुद्राएं कहलाती हैं, और दो ही मुद्राएं हैं जिनमें की मोक्ष होता है, खड़गासन और या कि पद्मासन, दो ही अपने यहां ध्यान की मुद्राएं मान्य हैं, ये भी है, और ये तो सिर्फ एक संकेत चिन्ह है बस, इसलिए कृपा करके और आप लोग इस तरह का बोलते, हम तो कुछ नहीं कहते, हम कहते जो बोल रहे हैं वो बोलो, हमें क्या करना है, तुम अंजलि छोड़ के बोलो तो, वो मुद्रा छोड़ के, फिर तो हम उनको और अच्छी सलाह देते हमसे, लेकिन हमारी बात कोई नहीं मानता, और सबकी मान लेता, हमारी नहीं मानता, हम कल से मानो अगर तो एक सलाह दे रहे क्या बोलना चाहिए। हे स्वामिन, मुद्रा छोड़कर अंजलि बांधकर खड़े होकर चबा चबा कर भोजन कर। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं माने, अरे जब इंस्ट्रक्शन देने, जब सलाह देने हैं तो अच्छी दे ना पूरी की पूरी, सब इंस्ट्रक्शन देने में लगे हैं, क्या हम इतने बुद्धू हैं क्या हम ऐसे ही खाना शुरू कर देंगे क्या, उन्हें मुद्रा छोड़ के अंजलि बांध। आप तो लिखा एक बिल्कुल कुछ नहीं लिखा आगम में, अपन करते हैं ये जुदी बात है, आगम में क्या लिखा, भो स्वामिन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु, ग्रहण करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, जैसी आपकी विधि हो। मैं कौन होता हूं आपको सलाह देने वाला, मैं आपसे बड़ा थोड़ी हूं, आपकी जो विधि हो हम नहीं जानते, किस तरह आप लेंगे, खड़े होकर लेंगे कि पानी पात्र में लेंगे, अंजलि छोड़ेंगे कि मुद्रा बांधेंगे कि फलाना करेंगे, हमें क्या मतलब, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि पांच प्रकार की शुद्धि बोलनी है बाहर से आने वाले को, और चौके में स्थित है उसको नौ प्रकार की, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भो स्वामिन, नमोस्तु। ये टेक्निकल वर्ड है, ये कोई नहीं बोलते, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, रात्रि भोजन का त्याग, नमोस्तु तो कोई नहीं करता, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आदि बोल देंगे, कोई कोई एक एक व्यक्ति कह रहे थे कहना शुद्धि 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 शुद्धि, आप क्या करें, इतना भी नहीं होता। तो बहुत सारी बातें नहीं कहके सहज रूप से कहो भैया,
अंदर कर्पाल सिंह से लगा देखा, हाँ,
बिल्कुल शुरू
पूजा हुई है तो
सब जो और थोड़ा अगर आपने तेज और देख लो तो फिर तो उनके बिल्कुल ही भूल जाओगे। धार्मिक ग्रंथों में विकल्प शब्द बहुत काम आता है। हाँ, विकल्प के मायने हैं अल्टरनेट, सामान्य भाषा में विकल्प के मायने हैं अल्टरनेट, और हमारे यहां पर विकल्प के मायने हैं मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, मैं सुखी दुखी, मैं रंग करा, एक मैं सुखी दुखी ये हो गया संकल्प, और मेरे गोधन इत्यादि ये हो गया विकल्प, ये रागात्मक विकल्प है, और एक होता है ये जानू ये जानू ये विकल्प, ये ज्ञानात्मक विकल्प कहलाता है। दो प्रकार का विकल्प है, छोड़ने योग्य कौन सा विकल्प है, रागात्मक, और ग्रहण करने योग्य है ज्ञानात्मक विकल्प, जानने का विकल्प तो है नमो अरहंतानम, इसके बाद नमो सिद्धानम, ये विकल्प ही है, ज्ञानात्मक विकल्प है, और नमो अरहंतानम तो कौन है ये अरहंत, इस तरह का विकल्प आ गया, मन इस तरह का अपने मन में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, ये सब ज्ञानात्मक विकल्प है, और ये मेरा है, ये मेरा है, ये पराया है, इस तरह का जो विकल्प है वो राग द्वेष रूप विकल्प कहलाता है। अपने यहां पर विकल्प शब्द के मायने ये है, वैसे सामान्य रूप से विकल्प के मायने हैं अल्टरनेट्स, दो में से कोई एक चूज करना है तो उसको बोलेंगे दो अल्टरनेट्स हैं आपके सामने, दो विकल्प हैं, या तो ये करो या कि ये करो, यहां सामान्य रूप से विकल्प के मायने ये। जब किसी की मृत्यु होती है तब सबको बुला करके खाना क्यों खिलाया जाता, अरे आप मत जाओ, वो खिला रहा है तो आपको क्या दिक्कत, ये अपन लोग क्यों इस तरह किसी की क्रियाओं को और बहुत जल्दी अपने मुताबिक स्टेटमेंट दे देते हैं, बताइए कितनी मुश्किल से एक दूसरे से प्रेम की और कुछ दूसरे का स्वागत करने की, और ऐसे अवसर पर, और कोई प्रक्रिया किसी ने शुरू करी होगी, देखो भैया खत्म करना एक मिनट में और बनाने में वर्षों, एक मिनट में आप खत्म कर दो सारी चीज, खत्म कर दो, असल में वो था क्या, ओरिजिनली क्या था, ये कभी खोजा कि क्यों ऐसा किया होगा, क्या कारण होना चाहिए, हमारे यहां पर तो बड़ा भारी दुख का अवसर, और हम सब दुनिया भर को बुला करके और बड़ा भारी मीनू बना करके और खाना खिलाए, ये बात कुछ समझ में नहीं आई, तो कारण क्या था ऐसा जिन लोगों ने शुरू किया होगा, सिर्फ ये था कि बिना बुलाए और जैसे ही खबर लगती थी कि 13वां दिन है आज, 12 दिन पूरे हो गए, अब उस जीव के संकलेश ज्यादा ना हो इससे अधिक, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा कषाय चले तो फिर व्रति नहीं रह जाएगा, इसलिए 15 दिन से पहले पहले 13वें दिन जाकर के उसको आर्ध ध्यान से बचा के धर्म ध्यान में लगाना है, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और सबने कहा कि दुखी न हो, हम सब आपके साथ हैं, और जरा की थाली रखी रहती है, उसमें 5 रुपया 10 रुपया जिसकी जो गुंजाइश है। और सुनो, कभी अपने को कमजोर मत मानना, जैसी आज हम मदद कर रहे ऐसी जिंदगी भर करेंगे तुम्हारी मदद। संकलेश छोड़ो और अपने धर्म ध्यान में लगो, चलो हमारे साथ सुबह 8 बजे से मंदिर में पूजा करना। और उधर से वापस लवा ले आए, कह ले अब सब जनों को देर हो गई, अब थोड़ो कचू थोड़ो थोड़ो खा लो और फिर जाओ घरे। सो बस जो अपने घर में था सो सबको थोड़ा थोड़ा खिला दिया, जय जनंद कर ली, आपको पानी पी लाओ, आपकी सौंप सुपारी खा ली, जय जनंद कर ली, व्यवहार बन गया। भैया तुम्हारे खाए आए हैं सो अपने ते बुलाए हम खावे को। अरे बड़ी आसान सी प्रक्रिया थी, फिर बाद में कॉम्प्लिकेट हो गई। कॉम्प्लिकेट हो गई तो उन्होंने कहा कि अब उसका बहिष्कार करो, ओरिजिनल क्या रही होगी इस पे विचार करो और उसकी ओरिजिनलिटी को बनाए रखने का प्रयत्न करो। उसमें आने वाली परंपराओं को तोड़ने की परंपरा नहीं बनानी चाहिए, परंपराओं में होने वाली टूट फूट को दुरुस्त करना चाहिए। ये आप लिख करके रख लो, हम दूसरी बार तो बोले नहीं पाएंगे, वो निकल गए एक बार मुंह से। अब आपको जैसा करना हो वैसा करें। अब आप जैसा चाहें वैसा बना लें उसको। मोक्ष अपनी का उपवास क्यों करते हैं? अरे भैया कैसे करते हैं? मंदिर जाने के अलावा पूजा भी करते हैं क्या? ठीक, प्रश्न तो बच्चों ने पूछे इसलिए उनका जवाब ऐसे नहीं। मोक्ष सप्तमी का उपवास क्यों करते हैं? उस दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण हुआ, और इतना ही नहीं उस व्रत को करके और लाभ भी प्राप्त हुआ, वो कथा कल बता देंगे। उस निमित्त से यह व्रत करना शुरू हो गया। मुझे भी मुकुट, कौन सा है मुकुट? 3 लोक का मुकुट कौन सा है? सिद्ध शिला। मुझे भी मुकुट के समान जैसे 3 लोक का मुकुट मोक्ष है वैसा मिले। और संसार में मुकुट कौन है बताओ? हाँ, परस्पर एक दूसरे का साथ बना रहे, ये मुकुट के समान शोभा है। जिससे विवाह किया है या जिससे मेरा विवाह होगा वो हमेशा बना रहे, ये भावना भी उसके पीछे छुपी हुई थी बाद में। ओरिजिनली तो उस दिन भगवान को मोक्ष हुआ, उस बहाने हम धर्म ध्यान करने के लिए उपवास धारण करते हैं, तप धारण करते, तपस्या करके कर्मों की निद्रा करेंगे, पुण्य का अर्जन करेंगे ताकि हमारा संसार घटे। कैसे करते हैं? अब उपवास तो एक ही प्रकार से किया जाता कि 4 प्रकार का भोजन नहीं करेंगे, और कोई दूसरे प्रकार का उपवास तो होता नहीं। तो अब कैसे करेंगे? यही करेंगे कि अपन तो उपवास करके मंदिर में बैठो। पहले हम बहुत चिढ़ाते थे अपनी बहन को कि ले इनका उपवास है सो चली मंदिर, अब शाम को लौटेंगे सोने के टाइम तक। आज समझ में आया कि क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भोजन पानी के बीच में रह करके और भोजन करने की इच्छा जागृत ना हो, इसलिए चलो मंदिर में बैठेंगे, 4 लोगों से धर्म ध्यान करेंगे बातों बातों में और पूरा दिन निकल जाएगा, नहीं तो मन बार बार भोजन में जाएगा। इसलिए जो लोग की सामर्थ्य नहीं रहती वो धर्म ध्यान के लिए और मंदिर में ही रह जाते हैं। मंदिर जाने के अलावा क्या करें? पूजा भी करें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूजा करते हैं तो और अच्छा है, और नहीं है अगर आप छोटे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं तो कैसे करेंगे वो पूजा? इसलिए भगवान के दर्शन करना और उपवास कर लिया। अब ये इन प्रश्नों का जवाब दें क्या? क्योंकि समय तो हो गया, इसलिए इन प्रश्नों के जवाब रोक देते हैं। वैसे इसमें एक प्रश्न बहुत काम का है, कहो तो पढ़ दें। पढ़ दें, आप बताओ, बाद में नहीं कहियो कि जो काय पढ़ो। महाराज जी, छोटे महाराज जी से अनुरोध है कि वो एक भजन सुनाए। अब देखो आपने कही थी हमने पढ़ रहा हूं, अब बाद में हम नहीं कह सकते। अब बस अब हमने तो आपने कहा था पढ़ दो, हमने पढ़ दिया, अब आप चाहिए कुछ करो, क्या कहेंगे? जो माइक जो है और माइक तो अभी लग
जाएगा। कर उपाओ मुख से उच्चार कर जिनवानी, अरे मूर्ख मानी अज्ञानी बेटा जाए तेरी जिंदगानी, न निजानंद हित कर उपाव मुख से उच्चार कर जिन बानी दया धर्म से कर सनेह दया धर्म से कर सनेह नरक पशु गत पावेगा छेदन देदन तारण तापन सूरी सन मुख पाएगा तपत खम्बे से लपेट कर जी तपत खम्बे से लपेट कर तो नीचे को लट काबेगे खंड खंड कर शरीर नाना भांति करे से दिखावेंगे समझ सीख जा रखो ठीक मन समझ सीख जा रखो ठीक मन बच प्रतीत कर रे प्राणी निजानंद हित कर उपाव मुख से उच्चार कर जिन वाणी पशु तन पा कर बार ल देगो बेतरमान हो बैनर्बल भूख प्यास नहीं मेरे समय पर लग बार तू तू क्यों रोवे बड़ी रिद का देर हुआ है खान पान बचा दिया ने मल तुंग सुख दंड मनोहर भोगत भोग नहीं तृप्त भया विभूत नाना भांति पाए जी विभूत नाना भांति पाए जी अथर जान बृत धर प्राणी निजानंद कर उपाव मुख से उच्चार कर जिन वाणी मानुष देह बलि मल मूत से मानुष देह बलि मल मूत से हृदय उदर गति मोहि लटका हुए मास न व्यतीत जब ही हुए मास न व्यतीत जब ही जन सहा दुख बालापन का तरुण अवस्था में रच इंद्रिय वृद्ध शिथल सब अंग किए यह विचार गति शांतिदार विज्ञान नवल सुत विज्ञानी निजानंद हित कर पाओ मुख से उच्चार कर जिन बानी अरे मूर्ख मानी अज्ञानी बिठा जाए तेरी जिंदगानी निजानंद हित कर उपाओ मुख से उच्चार कर जिन बानी बुढ़ी भगवान मांगे
मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार प्यार करूं, भावना
ऐसी मेरी सर सर के प्यार करूं,
बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं,
औरों का उपकार करूं।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।